डबुआ से उसमें छोड़ देते और वो एकदम खिल जाता है। वैसे ही बारी बिंदु सब, जैसे कि एक बिंदु पानी मरुस्थल के भूमि में जो तप रही है और उसमें यदि एक बिंदु पानी पड़ा तो क्या होगा? एक तो नीचे पानी चला गया और उसमें से बाष्प निकलेगा और वो बाष्प किसी को लग गया ना तो क्या होगा? फफोले हो जाएंगे और भी गर्मी पैदा कर देता। तवे पर खूब लाल है, उस पर थोड़ा सा छींटा मारिए तो छन्न कर देगा। पानी या घी का छींटा देखिए आग लग जाएगी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कहा तो सही कते बार बिंदु सम सुतमिता रमणी समाजे। अब उसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको इतनी ही तक जरूरत थी। तो ये जो बता रहे सुदन जो प्यार बढ़ाया इस वेणु गीत में, उसके बाद में रासस्थली में ब्रह्मा की रात कितनी हुई वो भी काल में कितने वर्ष हो जाएंगे, करोड़ों वर्ष, उतने वर्ष की रात, एक कल्प की मिली हुई रात। रात मैंने क्या इसमें इन्होंने दिया है? रात मैंने क्या? दिन और रात, चार पहर का दिन, चार पहर की रात, ये मिल करके अहोरात्र, अहोरात्र कहते हैं ना, अहोरात्र। इतनी सब मिल करके कल्प में जितने दिन और रात मिला करके होते हैं, एक ब्रह्मा के एक दिन की उतने ही रात, इतनी रात में कितनी लीलाएं हुई होंगी, कितनी लीला, जितनी प्रकार की लीलाएं थी इसी में, इसमें नित्य गीत, कृष्ण का अंतर ध्यान, उनका विरह में कीर्तन करना, कृष्ण का पुनः मिलना, गोपियों का प्रश्न, कृष्ण का उत्तर देना, इसके बाद में फिर रास आरंभ, डोल खेला, बंसी चूरी और लूटी छिपी खेलना, मैंने जितनी प्रकार की लीलाएं हो सकती हैं वो सब लीलाएं इसी में संपन्न हुई। और ऐसे संपन्न हुई जो मालूम हुआ आधा क्षण भी ये बदला है। प्रेम कैसे प्रारंभ से लेकर के पूर्वराग से आरंभ करके महाभाव और महाभाव के ऊपर में मदनाख्यम मादनाख्य तक, मोहनाख्य और ये सब को पार करके मादनाख्यम तक मैं पहुंचा। और जब प्रेम में तड़पने लगी तो उनके विरह में पशु पक्षी तक में विरह में अत्यंत ये हो गए, यहाँ तक कि वनों में आग भी लग गई उनके विरह में ताप से, संक्रमण कर लिया उन सब लोगों में जो उनके निकट थे, ये दिखला ये विरह में हुआ। अब वो उसको बतला रहे सुदन शब्द का तात्पर्य क्या, ये जो प्रेम बढ़ाया श्रीमद् भागवत में बतलाया, जो गोपियां उनके गति को याद कर, विलास को याद कर, उनकी प्रेम भरी बातों को, चितमन को, उनकी चाल को, मधुर भाव को, जिसे कि प्रेम बढ़ाया था, अब उसी को याद करके उनके विरह में वो बड़ी दुखी हो रही, विरह में तड़प रही हैं। ये तड़पाना क्या है? सुदन, यही काटना। ये किसका दोष है? कृष्ण ने स्वीकार कर दिया, ये मेरा ही दोष है। यहां तक कि उद्धव को संदेश दिया कि तीन बातें कहना आया, किस लिए? वो जो पहले जो मैंने कहा था जो मैं आऊंगा जल्दी से, अब उसकी परिपुष्टि चाहिए। जाकर के कहना जो कृष्ण तो आ रहे हैं, चल दिए हैं, अब उनको सांत्वना मिलेगी। अब वो आई गए हैं, करीब करीब आने के लिए एकदम प्रस्तुत थे और वो आ गए। तीन बातों के द्वारा उसी की परिपुष्टि करके उनको सांत्वना देने की चेष्टा करते हैं, किंतु हुआ क्या, आग और बढ़ गई, सांत्वना नहीं हुई। इसी को मधुसूदन अर्थ, सूदन अर्थ कहते हैं। अब मदात्मिका में जो कहा था, जाओ उनको सांत्वना दो, सांत्वना तो हुई नहीं, इसी के लिए कहते तादृश। वो जो बातें उन्होंने कहा था, विरह दुख साम्य की जो बात कही गई, यानी वो विरह उनका ताप कम गया, दूर हो गया, यह बात ठीक नहीं। भागवत में ऐसा लिखा है जो उनका विरह, उनका जीव कोष भस्त हो गया और वो परम आनंद में निमग्न हो गए, उनको मुक्ति मिल गई। किंतु इसका यथार्थ यही अर्थ नहीं है। जीव कोष का ध्वस्त होना माने क्या?
जीवित रहने का आशा,
जीवित रहने की आशा इसको जीव कोष भीतर में छिपी हुई थी। कृष्ण ने कहा ये आएंगे, जो संदेश दिया था वही हमारे लिए जीवन का कारण था। अब इन उपदेश में जो सर्वत्र तुम ध्यान करो और कृष्ण को पा जाएगी, तब तो आएंगे। और ये जितने भी कहे हैं उससे उद्दीपन प्रेम की बातें पहले वाली और भी नए नए रूप में आने लगी और उनका विरह दुख और कोटि गुण बढ़ गया। यहाँ तक ही जीव कोष भी उनका, अर्थात बचने की जो आशा थी अब वो आशा भी सब, अब वो आएंगे नहीं। इसलिए कहते हैं किंतु मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि प्राण तो उनके हाथ में है नहीं, और कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है मरने नहीं देंगे, और उनको देख करके आनंदित होंगे, उनका दुख में दर्द होंगे। इसलिए मदात्मिका पद की व्याख्या जो संदेश के निमित्त उनके विरह दुख को साम्य करने के लिए भेजा गया उद्धव, और उन्होंने साम्य कर दिया। गोपियाँ, गोपियों को उन्होंने दो महीने या कितने, तीन महीने या कितने,
तीन महीने,
छः महीने, कितना हुआ उसमें उनके साथ में रहे, गोपियों के साथ, और उनको सांत्वना दी। कृष्ण की कथाओं की परस्पर चर्चा हुई और बड़ी सुखी हो गई। ऊपर से ऐसा झलकता है किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उनका सर्वत्र ऐसा ही रखा, विरह की ज्वाला और बढ़ गई। इसलिए जो साम्य कथित हुआ है वहाँ निरस्त हुई ऐसा समझो, अर्थात तो गोपियों को सांत्वना नहीं मिली। जेहेतु ये स्थले प्रतिपन्न हो रे ताहते तादृशी मन पीड़ा आमार न है। मतलब क्या, एक चीज का स्थापन करके फिर उसी को खंडन करके आप फिर उसी को स्थापन करते हैं, कितने तरह के भाव लाते हैं। अब ये कहते हैं जो उनकी जो मन पीड़ा है उनकी है, मेरी नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और भी पहले बतलाने मदात्मिका के द्वारा क्या बतलाया, इसलिए वो हमारा उनका स्वरूप एक ही है। अब यहाँ पर एक विशेष बात करें, मदात्मिका होने पर भी एक वस्तुगत जो स्वभाव है उसका विनाश नहीं होता, उसका वैशिष्ट्य सब समय रहता है। मदात्मिका होने पर भी मत आत्मिका में कृष्ण और गोपियां दोनों एक नहीं हो जाती, शक्ति हैं एक, एकदम संपूर्ण रूप से नहीं होंगी, अचिंत भेदाभेद रहेगा, और जहां पर अचिंत भेदाभेद रहेगा वहां पर भेद ही प्रबल रहेगा, जो अभेद है वो अनुभूत नहीं होता है। यह दार्शनिक विचार है, भेद ही अनुभव का विषय होता है। अब यहां पर ये बतला रहे हैं इस कारण से अभेद होने पर भी जो भेद है, कृष्ण निर्विशेष व्यक्ति के पास में निर्विशेष जैसे लगेगा, वात्सल्य वाले भाव भक्ति आश्रय यदि होगा तो वो वात्सल्य रूप में उसके साथ में व्यवहार करे, उसी रस का आस्वादन करे, सखाओं को देख करके सख रस का आस्वादन करें, वो सखा बन जाएंगे, जशोदा के हैं लाडले बेटे बन जाएंगे, वो शिशु बन जाएंगे, इस तरह से उनका स्वभाव। गोपियों के पास में वो कैसे होंगे, सब समय वैसे ही रहेंगे किशोर रूप में। अब ये जो बतलाया है ना, रघुपति पद्य है
वाला,
श्याम एव परम रूपम पूरी मधुरी पूरी बरा वया कैशोरकम हे आद्य एव परम रस, श्रेष्ठ रूप मानो काय, श्रेष्ठ जितने भी रूप हैं उसमें तुमको किसको समझता है श्रेष्ठ। रघुपति उपाध्याय ने कहा श्याम ही पर रूप है, इसे बढ़कर क्या वो कोई रूप नहीं, तो श्याम तो हमारे बावन जी भी थे, श्याम तो राम भी हैं, उनके सभी अवतार ही श्याम हैं, तो श्याम एव परम रूपम कहने से क्या हुआ, उनका राम ही परम तत्व है, इसलिए इसको परिभाषा मत समझो श्याम एव परम रूपम, इसलिए परवर्ती का एक एक के उत्तर में एक प्रश्न और उत्तर है, सब श्याम ही हमारे आराध्य नहीं है, सबसे श्रेष्ठ नहीं है, द्वारकाधीश भी मथुराधीश कृष्ण भी श्याम, ये साकेतपति अयोध्यापति राम भी श्याम, और बलि महाराज के आराध्य देव भी वामन देव भी श्याम, और भी श्याम, भ्रमर भी श्यामला है, आकाश भी श्याम है, तो श्याम एव परम रूपम से हम क्या समझेंगे, इसलिए इस पर विशेष लिया है श्याम एव परम रूपम, माने क्या नहीं इसके बाद में बतला, श्याम एव परम रूपम
श्याम रूप वासस्थान
नहीं
पूरी मधुपुरी बरा,
पूरी मधुपुरी बरा, जहाँ पर मधु है बरसती है, मधु मधु की पूरी, मधु रस का भंडार है जहाँ, वो मथुरा पूरी उपलक्षण है, असल में है मधुपुरी, मधुपुरी कहाँ है, जहाँ सबसे अधिक श्रेष्ठ तरह की मधु सब समय बरसती है, कृष्ण का रूप सौकुमार्ज वेणु माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी कहाँ पर बरसती है, कहाँ पर अनुभूत होती है, जहाँ पर होती है वही मधुपुरी, अतः ब्रज, इसलिए ब्रज के जो कृष्ण हैं नंदनंदन राधाकांत हैं वही श्रेष्ठ रूप है, हम मैं उसी को मानता हूँ, और सब रूपों को नहीं, जो श्याम तो हैं किंतु श्याम नहीं। अब हुआ श्याम तो और वृंदावन के कृष्ण जो हैं ये तो जशोदा के लाडले बेटे भी हैं, और सिद्धांत के सखा सुबल के भी सखा मधुमंगल इत्यादि सबके सखा भी तो हैं, यही तो आपके वो रूप वाला जो श्रेष्ठ रूप जिसको कह रहे हो और वृंदावन में रहने वाले, नहीं नहीं इनको मैं नहीं कह रहा, इसलिए तीसरे चीज को कह रहे हैं भया कैसो रकम, जिनका नित्य रूप ही है क्या किशोर, नटवर क्या है वो
नव किशोर
नटवर
गोपवेश वेणुकर,
ये जो है रूप और ये जहाँ पर है प्रकाशित है वही अभी भी कुछ उसमें रह गया। श्याम एव परम रूपम पुरी मधुरी पुरी बरा भय कैशो रकम हेय आद्य एव परो रस, जिन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया था वही हमारे श्याम है तो नहीं, कौन है वो है आद्य हेय आद्य एव परो रस मधुरसी आद्य रस, श्रीमती राधिका का जो अत्यंत मादन मोदन तक भाव है यही चरम सीमा तक माधुर्य आद्य रे और यही उसी के अंतर्गत में शांत दासख्य बासल इत्यादि सब उसी के अंतर्गत, यहाँ तक कि वो प्रेम स्नेह मान राग अनुराग भाव महाभाव अधिरूढ़ रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मोहन वही सबका मूल क्या है वो मादन है, ये मूल आद्य रस है यही सबसे श्रेष्ठ रस जिसमें कृष्ण सब समय डूबे रहते हैं। महाप्रभु सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और सबको एक साथ में मिला करके, इसलिए इसका भी एक तात्पर्य है ये श्लोक का, एक एक के बाद में एक एक प्रश्न और इसके बाद में इसको समाधान करते हुए ब्रज रस रसिक वही गोपियों के प्राणधन उन्हीं के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब कहते हैं वो जो गोपियों को इतना जो प्रेम बढ़ाया उसका इतना आस्वादन किया और फिर क्या किया आस्वादन करके चले गए द्वारका मथुरा पहले मथुरा इसके बाद में द्वारका। अब मैं इस चीज को बतला रहा था मन पीड़ा गोपियों की मन पीड़ा की मन पीड़ा एक नहीं है इस पर मैं लिया रहा। गोपियों की मन पीड़ा से कृष्ण को भी मन पीड़ा है क्योंकि मदात्मिका है ये बात तो ठीक है, किंतु कृष्ण की मन पीड़ा गोपियों के मन पीड़ा के बराबर होगी कि नहीं होगी, वजन करने से क्या होगा, ये जो मदनाख्य भाव कहा ये कृष्ण में है कि नहीं, यदि है भी तो कब है, गोपियों के भाव की स्फूर्ति जमन में होती है तब, नहीं तो वो पर ब्रह्म केवल ब्रह्म है अथवा और रसों के आश्रय के भक्तों के साथ में रहने से वैसे हो जाते हैं, तो इसलिए गोपियों के निकट आएंगे तो अभी कहाँ तक जाएगा रूढ़ अधिरूढ़ तक जाएगा, यहाँ तक कि अधरूढ़ भाव केवल मात्र राधा जी के वही गणों में ही होता है परिक्रमा और चंद्रावली प्रभृति में भी नहीं होता है, और ये जो मादन जा कहा राधा जी के अपने गणों में भी नहीं है
एक चिटिया संपत्ति
वो राधा जी की इसी चीज का आस्वादन करने राधाया प्रणय महिमा। यदि कृष्ण अब चले गए द्वारका में मन पीड़ा हो रही है उनको गोपियों जैसे, किंतु मदनाख्य भाव नहीं होने के कारण उनको उतनी मन पीड़ा नहीं हो रही है जितना कि गोपियों को हो रहा है। ये पीड़ा किस लिए होती है, जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके दुख में हमको पीड़ा होगी, संसार में भी ऐसा है जिसको हम प्रीति करते हैं प्रेम करते हैं जिसके प्रति हमारी ममता है, अपना एक एक लड़का था और वो बीमार हो गया और वो अस्पताल चला गया, हम यहाँ पर हैं बूढ़े आदमी जा नहीं सकते, तो उस बच्चे के लिए दुख होगा कि नहीं, यदि मर गया तो दुख होगा उसके लिए, जहाँ ममता होगी इसके लिए दुख होगा। कृष्ण की गोपियों के प्रति ममता है और गोपियों के कृष्ण के प्रति ममता है, ये ममता दोनों में से किस में वजन करने में बराबर हो, बड़ा बड़ा होगा गोपियों का कृष्ण के प्रति जो ममता है वो। इसलिए कृष्ण में मन पीड़ा होने पर भी गोपियों की जैसी मन पीड़ा होती है कृष्ण के लिए, कृष्ण में गोपियों के लिए उतना नहीं होगा। इसलिए न पा रहे हम निर्वत्त संज्ञा, इस चीज को दिखला रहे हैं, इसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। अब ये यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये प्रतिपन्न हुआ कि तहाँ देरी मन पीड़ा तादृश, गोपियों की ही इतनी बड़ी ऊंची मन पीड़ा है, वो मेरी पीड़ा नहीं है। क्यों? मेरे अंदर में वो भाव नहीं है, प्रेम का वह अंतिम जो स्तर है हमारे अंदर में नहीं। इसलिए जो है तो रसो वैसा है, कोई इसलिए कहा गया गोपियों को और आश्रयों को सबको एक साथ में कर करके कृष्ण रसो वैसा, यहाँ पर ये कहा गया इसलिए कहा। किंतु ऐसा भी मत समझो जो कृष्ण में कुछ है ही नहीं है, गोपियों के संपर्क से ही होता है, नहीं तो गोपियों को उनको देखने से ऐसा कैसे होता है। इसलिए दोनों एक ही अभिन्न ही चीज है। यहाँ पर केवल एक शाखा चंद्र न्याय हम दिखला रहे हैं, कैसी वास्तविक बात है वो तो वहाँ जाने पर, ऐसा प्रेम होने पर हम उसकी उपलब्धि कर सकते। इस प्रकार से परवर्ती श्लोक में भी अर्थ संगति करना पड़ेगा। क्या? गोपियों का जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण में जो मन पीड़ा है, गोपियों में जो मन पीड़ा है, ये सब में गोपियों की ही कृष्ण प्रशंसा कर रहे हैं, जो हमसे अधिक गोपियों का रूप, हमसे अधिक गोपियों में अधिक प्रेम, हमसे अधिक विच्छेद का दुख है ये गोपी, इसे न पा रहे हम अपने मुख से। कृष्ण उद्धव जी को ये समझा रहे हैं, किंतु उद्धव जी कितना समझते हैं, सनातन गोस्वामी जितना समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं कि नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता। क्यों क्यों नहीं लगता? क्योंकि सनातन गोस्वामी ब्रज के परिकर हैं और राधा जी की सेविका हैं, इसलिए वो जितना समझेंगे, हम समझते हैं कि उद्धव जी उतना नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी भीतर की बातों को प्रकाश, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के शब्दों में, इसीलिए अतः सकल सल्लोक शिरोमणि, मैं समस्त लोगों का शिरोमणि हूँ। सुनो मने मत तो, और ऐसा जो मैं सब लोगों में शिरोमणि हूँ, उन लोगों में भी हमसे भी अधिक तरासता, हमसे भी अधिकतर वो सब विषयों में, सब विषयों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए सल्लोक शिरोमणि में हमसे भी वो अधिकतर काठिन्य और अकृतज्ञता आदि राहित जानते हैं। माने क्या? हमसे भी अधिक काठिन्य, अर्थात तो काठिन्य रही ये समझ, और हमसे भी अधिक अकृतज्ञता आदि राहित्य, मैं अकृतज्ञत्व रहित, मैं कृतज्ञ हूँ, ये अपने उसमें दिखला है श्रीमद् भागवत। और कौन सा दो श्लोक तीन श्लोक है, जैसे कि कोई चीज भूल जाने के बाद फिर भी भूल जाती है, माया परोक्षो तिरोहिता, वो बात श्लोक आदि क्या मतर्थ उज्जित लोक वेद, अर्थात उसमें ये बतला रहे हैं कृष्ण ने को गोपियों ने कहा, साबित करना चाहा कृष्ण कैसे हैं, अकृतज्ञ हैं। कृष्ण ने बतलाया मैं बनिया नहीं, मैं माता पिता की तरह और गुरुजनों की भांति दयालु और केवल कृतज्ञ ही नहीं हूँ, उससे भी कुछ अधिक, मैं आत्माराम आत्मकाम की भांति नहीं हूँ जो कोई प्यार करे न करूं। मैं और बाकी दो रह गया, गुरुद्रोही और मैं गुरुद्रोही भी नहीं, क्योंकि मैंने तुमको दर्शन दिया, तुम लोगों को बुलाया, इसलिए आत्मराम भी नहीं, आत्मकाम भी नहीं हूँ। माता पिता की तरह में मैं केवल उतना ही एक सीमित रूप में उदार नहीं, मैं उसे बहुत ऊपर, मैं इन लोगों में से कोई नहीं। तब गोपियों कुछ प्रसन्न हुई और कहने लगी, अब ये सबको दूर कर दिया, आप केवल अकृतज्ञ है इसमें आएंगे, अब ये स्वीकार। उन्होंने कहा कि मैं अकृतज्ञ भी नहीं, मैं तो कृतज्ञ हूँ, मैं तो फिर मैं कैसे आ गया तुम लोगों को दर्शन देने के लिए। फिर उन्होंने बताया जे कैसे मैं अकृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं छिप गया था और तुम्हें देख रहा था। दूसरी बात उन्होंने अंत में कहा, तुम्हारा प्रेम बढ़ाना नहीं, वो तो बढ़ा हुआ है, क्या मैं प्रेम बढ़ाऊंगा, तुम्हारा ये प्रेम नित्य स्वभाव सिद्ध है, उसको बढ़ाना नहीं, बढ़ने का कोई जगह नहीं है। तो फिर अपना आस्वादन करने के लिए और जगत को भी शिक्षा देने के लिए मैं ऐसा किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी। अब कहते हैं कि गोपियां जितने कृष्ण निष्ठुर जैसे दिखते हैं किंतु निष्ठुर नहीं है, गोपियों ने कहा, जब कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो गोपियां सोचा कि हम जीत करके भी हार गए इस सद्गुण्य से, एक दोनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध में बराबरी का युद्ध हो रहा है, और समय हमने कह दिया भाई आप ही जीत गए मैं हार, और उसको जीतने की संभावना नहीं थी, किंतु अब वो क्या करता है, नहीं भाई तुम ही जीत गए मैं हार गए, ऐसा ही सुलहनामा होता। पौरुष को सिकंदर ने कहा तेरे साथ कैसा व्यवहार आऊं,
गुरु
तो उन्होंने क्या कहा,
राजा के प्रति राजा का
जैसा व्यवहार होता है, बस प्रसन्न होकर के उनको
लौटा
करके उनको बराबरी का दर्जा। तो यहाँ पर दोनों में चल रहा था, गोपियाँ कृष्ण को हराना चाहती थी, कृष्ण स्वयं ही जब हार गए तो गोपियों ने कहा देखो कृष्ण ने हार करके भी और वो हमें जीत लिया। तो इसलिए गोपियाँ कृष्ण कठिन हैं, किंतु कठिन इसलिए नहीं कि द्वारका में जबकि वो लीला हुई कौन सी, नौ वृंदावन, उसमें दिख रहा है कि कृष्ण जैसा कोमल कोई नहीं, ये कोमलता के लिए ऐसी लीला करते हैं, गोपियों को छोड़कर के गए किंतु किस लिए, इतना कोमल है कि गोपियों का इतना दुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो कोमल, किंतु गोपियां कैसी कोमल है, कृष्ण से भी अधिक कोमल है। और अकृतज्ञ जो कृष्ण अकृतज्ञ हैं वो उनमें से कोई भी नहीं, गोपियों के लिए दिखलाया था कि गोपियां कैसी हैं, पिता माता की भांति गुरुजन की भांति स्नेहशील है, बिना किसी कारण के बिना हेतु के ही यदि पिता माता पुत्र और श्री से यदि प्रीति ना करे तभी गुरु करता है और पिता माता करते हैं पुत्र को, वही एक बिरला ही पिता होगा यदि पुत्र ने पिता के प्रति बगावत भी की, कोई विद्रोह भी किया, किंतु जब पिता को जब होगा न समय तो अपने पुत्रों को बराबर बराबर ये नहीं विचार करेगा जी ये हमारा विरोध किया है या कैसा किया। बहुत मुसलमानों जैसे औरंगजेब के पिता औरंगजेब इत्यादि हुए, ऐसा ही कोई बिरला बने तो हिंदू समाज में ऐसा हो बहुत, वो बराबर विभाग करते हैं सब। तो कृष्ण कहते हैं जो मैं वैसा नहीं, गोपियों को कहा कि तो फिर उन्होंने कहा माता पिता से भी अधिक गोपियां हैं, जब मैं उनका ऋणी हूँ तो उनका आदर्श ये हो सकता है माता पिता, नहीं होगा, इसलिए इस दृष्टि से भी कृष्ण से भी बढ़ करके अकृतज्ञ हैं गोपियां, कृष्ण के छोटी सी भी कुछ बात को देख करके और कृष्ण का वो, कृष्ण ने गोपियों ने जितनी सेवा की कृष्ण ने गोपियों को इतनी सेवा की, आ कि गोपियों ने अधिक से बात और तभी अपने को ऋणी मान रही। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण स्वयं इस चीज को स्वीकार करके गोपियों की महिमा को, गोपियों के प्रेम को, गोपियों के भावों को, उदारता को जगत में प्रचार करते हैं। इस तरह से इन विद्याओं का विचार किया। अगले अब दो श्लोकों में भी इसी तरह से व्याख्या इसी के अनुरूप की जाएगी। आज पंचा कल्पत्र
क्या एक और यहाँ से कर दिया।